सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। मैं बोल भी नहीं रहा हूँ तब कैसे सुन सकते हैं? बोलते बोलते भी मैं और कुछ सोच रहा हूँ। तो आप भी सुनते सुनते और कुछ सोच रहे हैं। देखो सिद्ध करके बताता हूँ कि सभी सुन नहीं रहे। सिद्ध करके बताओ कि मान गए? नहीं माने ना। सॉरी, सिद्ध करके बताता हूँ। अच्छा, ये गेम हमने बचपन में भी खेली है, आज अलग प्रकार से खेलेंगे। परमात्मा का नाम बताया आपको? नहीं बताया। अच्छा देखो, टाइम कम होता है ना। परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं। कोई बाबा नहीं है डाही मुछ वाला, परंतु जो निराकार है ना, ज्योति बिंदु है, जिनको कहा शिव बाबा। तो शिव बाबा की बात ही माननी है और किसी की बात नहीं माननी है। मैं कहूंगा, परंतु जब मैं कहूंगा शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ठीक है? अच्छा ओके, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, जल्दी जल्दी करो, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, शिव बाबा कहते बैठ जाओ, शिव बाबा कहते खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा बैठ जाओ। अच्छा चलो, आप सभी जीत गए, बैठ जाओ। शिव बाबा ने थोड़ी कहा, देखो शिव बाबा ने नहीं बोला ना, तुम सब कहते। अच्छा शिव बाबा कहते बैठ जाओ, तो मान गए कि हम सुनते नहीं। तो ध्यान से सुनो, जितना अच्छे से सुनेंगे उतना फायदा होगा। सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको धारण भी करना है। और धारण कब होगा कि जब उसको आप रिपीट करेंगे, वह स्मृति में भी रहेगा, आपकी मेमोरी में वो आएगा अगर आप उसे रिपीट करेंगे। तो ये प्रोसेस साथ साथ में करना है। अभी सुन रहे सो तो पीछे क्या बोला था, क्या इंपॉर्टेंट बात थी, तब वह याद भी रह जाएगा, उसे हमें फील भी करना है। क्योंकि दोबारा शायद आप उसको इतना रिपीट नहीं कर पाएंगे, फिर सारा दिन तो बिजी हो जाते हैं, इसलिए अभी अभी फील करो। जितना इसी समय आपकी कॉन्शियसनेस में ये बात आ जाए बहुत अच्छा है। कोशिश भी करना रिपीट करने की, परंतु इमीडिएटली फील भी करना है। क्रोध को अलविदा करने के लिए बहुत सारी बातें हमने थोड़ी थोड़ी समझी है। आज हम प्रैक्टिकल टेक्निक्स को देखते हैं। सबसे पहली टेक्निक है डॉक्टर अली का संपर्क करो। कौन है डॉक्टर अली? नहीं मालूम? देखो अली का स्पेलिंग क्या है, ALI। तो ए का अर्थ है एक्सेप्ट। आज कई लोग क्रोध को अलविदा इसीलिए नहीं कह पाते क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे में क्रोध है। तो कोई ना कोई तर्क देते हैं कि वे तो ठीक है, होना चाहिए। जब तक गुस्सा नहीं करेंगे बच्चे पढ़ेंगे है ना, क्रोध नहीं करेंगे तो कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं देगा है ना। जब वो ज्वाइन हुए एक दो दिन में, मैंने देखा अजीब सी बात इसमें कि वो दो वाक्य बोलेंगे तो तीन बार बोलेगा समझो। हाँ समझो, अभी मैं फोन कर रहा हूं, बार बार समझो बोलेगा। थोड़े दिन के बाद, पहले तो नहीं बोला क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़े दिन के बाद मैंने उसको एक बार बैठ के बताया है कि आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा ब्लैंक वर्ड यूज करते हैं कि जिसकी बड़ी नेगेटिव इफेक्ट होती है सुनने वाले पे। तो बोलते हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैं बोलता हूँ समझो। और वो कहता है कि वो तो बचपन से है, मेरे फ्रेंड मुझे इसी शब्द से चिढ़ाते हैं, मेरा नाम रखा है उन्होंने समझो। लेकिन देखा मैंने कि तो भी वो चेंज नहीं कर रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये समझता है कि ठीक है ना, इसको परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अन्यथा ये बड़ी सरल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखे वो चेंज धीरे धीरे हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें भी जो भी परिवर्तन लाना चाहते हो एक्सेप्ट करो। मैं और बातें नहीं करता हूं यहां पर, बस क्रोध अगर मेरे में आ रहा है, चीड़ भी आ रही है, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो वो भी गुस्से का स्वरूप है, उसमें भी परिवर्तन लाना है। एक का दूसरा अर्थ है अवेयरनेस, अर्थात सजगता। क्रोध आ जाए फिर बहुत मुश्किल है, जैसे शुरुआत हुई कुछ करो तो पॉसिबल। इसलिए सिर्फ क्रोध के लिए सजगता काम नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि जब क्रोध आएगा मैं सजग हो जाऊंगा, परंतु तो कब आया मालूम नहीं, क्योंकि सारा दिन आप ऐसे ही फटाफट काम कर रहे, कहीं बुद्धि चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो क्रोध आएगा पता नहीं चलेगा। परंतु तो आवश्यकता है कि यह सजगता सारे दिन धारण करें, 24 घंटा सजग होकर के सब कुछ करना है। सजगता मतलब क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है, कोई फीलिंग आने से पहले भी विचार होता है, विचार आने से पहले भी कुछ कुछ होता है ना, उसके लिए शब्द देना मुश्किल है, परंतु जैसे वॉमिटिंग होने से पहले कुछ होता है, नौशिया बोलते हैं जिसको, तो ऐसे ही विचार आने से पहले भी कुछ होता है, तो उसके बारे में भी सजग हो जाए। और सजगता का अगर अभ्यास करना है, देखो एक काम करो, हाथ कैसे करो, मैंने हाथ में माइक पकड़ा, बस ऐसे हाथ को एकदम नजदीक रखो, ऐसे ऐसे घुमाओ ना, ऐसे घुमाओ ना, दूर ले जाओ, नजदीक लाओ, हाथों के मध्य कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है, हाथ एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे हैं, हाथ के बीच में लगेगा कि जैसे ऊर्जा आ रही है, ये सब जब जब भी हमने ऐसे कहीं कभी ना कभी तो हाथ रखा है तब हो रहा था, परंतु आप तब सजग नहीं थे ना, आपका वहां पर अटेंशन नहीं था, इसके कारण वो फील नहीं हुआ। आज मैंने आपको स्पेशली कहा और आपने अटेंशन रखा तो वो पता चला कि भी हाथ के मध्य कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही हर बात में सजग होना, जो सभी बैठे भी हो सजग हो करके बैठो। देखो खुशी के अंदर बैठो जितना हो सके, कमर और अंदर कोशिश करो बैठने की, दोनों पैरों को जमीन पे रख दो कंफर्टेबली थोड़े अंतर पर, हाथ को ऐसे मोड़ लो दोनों, कंधे को भी ढीला कर दो, मुंह को थोड़ा सा खोल दो, थोड़ा सा एकदम कंधे को ढीला कर दो। देखो अभी ये ज्यादा सुखदायक है, ये पोजीशन कंफर्टेबल है कि नहीं, पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है ना, परंतु पहले आप सजग होके नहीं बैठे थे, वो पोजीशन अनकंफर्टेबल थी, थोड़ी भी भले 2%, परंतु अनकंफर्टेबल थी। क्यों आप ऐसे बैठे रहे, क्योंकि आप जागृत नहीं थे तब। अगर दर्द होने लगे है ना, कोई गलत पोजीशन में बैठा है उसको दर्द होने लगे तब तो सोचेगा नहीं, अभी ठीक करने की कोशिश करेगा, परंतु तब तक ठीक करने की कोशिश नहीं करता है, बरोबर बात बरोबर नहीं है। वास्तव में सब कुछ सजग होकर के करना, क्योंकि थोड़ा भी टेंशन क्यों आए, कोई भी चीज में दर्द होने से पहले आपका पोस्चर गलत है, फिर धीरे धीरे करके दर्द हो जाता है, तो पोस्चर को ठीक करो तो दर्द होगा ही। ऐसे ही विचारों से पहले जो हो रहा है उसके बारे में सजग हो जाओ, उस बात में परिवर्तन ला दो तो आगे चल के नेगेटिव विचार आएगा ही, टेंशन कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए सब कुछ सजग हो करके करो। तब इसका अभ्यास क्या करना, वास्तव में सवेरे से जो भी काम करते हो ना ये सोचो, जैसे चल रहे हैं तो मेरा हाथ हिल रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान दो कि जो हाथ पीछे जाता है आगे जाता है हाथ ना, क्या हो रहा है उसी पर ध्यान दो। थोड़ा बड़ा अजीब सा भी लगेगा लेकिन देखना बहुत बड़ा फायदा है, आप वर्तमान में जीने लगेंगे। अन्यथा आमतौर पर हम भविष्य में या भूतकाल में होते हैं, प्रेजेंट में होते ही खा भी रहे हो पूरा बस उसी में ध्यान हो कि हाथ में चम्मच से मैंने लिया, मुंह तक लाया, मुंह में रखा, अभी मैं चबा रहा हूं, ये फीलिंग हो रही है, अभी स्वॉलो कर रहा हूं, फिर भी रुको, स्वॉलो करने के बाद भी कुछ सेंसेशन होता है उसको भी फील कर, है ना, फिर दूसरी चम्मच लो, फिर इसमें थोड़े से स्लो हो जाएंगे। परंतु बहुत सारी एक्टिविटीज खूब इम्पोर्टेंट, जैसे खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम कैसे खाते हैं, जैसे शरीर में पेट्रोल डाल रहे हैं, खाना वह पेट्रोल डालना नहीं। खाना खाते समय टीवी नहीं देखो, यहां तक कि किसी से बात भी कर रहे हैं ना तो सजग होकर के करो, क्योंकि व्यक्ति बोल रहा है एक बार उसका भाव और हो सकता है, उस भाव को समझो। और तब होगा कि जब आप सजग होंगे और अच्छे से सुनो भी, आमतौर पर हम सुनते भी नहीं ना, हम तो ये राह देखते कि कब वो रुके और मैं बोलना शुरू कर दे बेटा, हाँ मैं समझ गया और आप अपना बोलना शुरू कर दे, तो ऐसे में इसका भाव कुछ है ना, एकदम डिटैच होकर के अच्छे से सुन तब उसे कैच कर पाएंगे। सब काम सजग हो करके करो, फोन पे भी आप सुन रहे हो सजग होकर के सुनो, नहीं क्या सेंसेशन आता है। देखो मोबाइल पे हम सब सुनते हैं ना, परंतु रेडिएशन भी जाता है वास्तव में, देखना कान गर्म हो जाएंगे, है ना। तो सजग होके सुनो, जरा भी आ रहा है दूर ले लो, हाँ माइक पे रख दो उसको, स्पीकर पे रख दो, तो इसे सब काम सजग होकर के करेंगे तो पता चलेगा कि कब हुआ थॉट आ रहा है, और जैसे थॉट आएगा उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो ए इज अवेयरनेस, हाँ बहुत बड़ी बात है, इसमें काफी अभ्यास करने की जरूरत है, और नहीं न केवल क्रोध को अलविदा करने के लिए और बहुत सारे जीवन के पहलुओं में भी ये बात मदद करेगी। एल का अर्थ है लिसन, हाँ सुनो। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, हमने कारणों की भी चर्चा की कि क्यों क्रोध आता है, तो जब वो कारण उद्भव होता है तब ही कुछ अंदर में वो मैसेज दे रहा है आपको, और वो मैसेज को सुनो। तनाव की एक बहुत अच्छी परिभाषा है जिसमें कहा गया कि तनाव एक मैसेंजर है जो ये कहने के लिए आया है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। तो क्रोध को भी सुनो, जब आप सुनेंगे तब पता चलेगा कि क्या परिवर्तन की आवश्यकता है। कल भी सोचा था क्रोध के कारणों के बारे में, सोचा कि मुझे क्यों क्रोध आता है, किसने किसने सोचा, दो चार लोगों ने सोचा और बस सुन के चले गए, सोचेंगे तो ही फायदा होगा। हाँ डॉक्टर साहब क्या सोचा है, क्यों क्रोध आता है,
जब झगड़ा कोई सुनता नहीं तो
हाँ, जब कोई सुनता नहीं है तो गुस्सा आता है। और कुछ और कोई सुना है?
जब मैं अच्छी तरह से नहीं करता तभी मुझे गुस्सा आता है।
मैं अच्छी तरह से नहीं कर रहा हूँ, ये हो सकता है अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैं अच्छी तरह से नहीं कर रहा हूँ। और कुछ और किसने सोचा?
जब मैं किताबों में पढ़ती हूँ।
क्या?
हाँ, जब किताबों में पढ़ती हूँ भगवद्गीता ऐसा नहीं करना चाहिए एंड आई ट्राई टू फॉलो, लेकिन दूसरा आदमी नहीं करता है उसको
तो गुस्सा
आता
है। वो ठीक है, वो फीलिंग है ना कि अच्छा नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है, करना चाहिए
क्या करें।
तो वो भी गुस्सा एक प्रकार से देखो तो। और क्या बताया?
इरिटेशन होता है तो गुस्सा होता है।
किन क्यों इरिटेशन होता है? नहीं, इरिटेशन क्यों होता है?
कोई हमारे हिसाब से कोई
नहीं कर रहा है ना, तो होता है। अच्छा, ये जो सब बातें हैं ना, उसको और भी जिन्होंने नहीं भी किया ना, और देखें इनजस्टिस हो तो वेरी। हाँ, और क्या करना चाहिए पता है? कि बचपन से लेके अब तक कब कब आपको गुस्सा आया याद करो। जब ज्यादा ही गुस्सा आया कैसे याद करें, नहीं परंतु वो सचमुच है ना, थोड़ा टाइम निकाल कर और फिर उसके पीछे कारण क्या हुआ था तो आपको समझ में आएगा। तो वास्तव में क्रोध कब आता है? कि जब हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती, तो कब वो अहंकार को ठेस पहुंचे, या तो कभी कुछ फ्रस्ट्रेशन आया तब भी गुस्सा आ सकता है। जैसे आपको किसी से पैसे लेने और जरूरत भी है पैसों की, कोई व्यक्ति दे नहीं रहा है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा और तब गुस्सा आएगा, है ना। ऐसी चीजें सही भी लगती हैं, जैसे कि अन्याय हो रहा है तो भाई ने भी कहा जस्टिफाइड एंगर, एक अच्छा शब्द है कि हम क्रोध को जस्टिफिकेशन देते हैं, परंतु क्रोध तो क्रोध ही है ना, वो काम करना है कि आपको पैसे मिल नहीं चाहिए, अन्याय को ठीक करना है, परंतु पक्का यह कर लो कि भी और युक्तियां सोचनी है।
लेकिन हम तो मैं तो थक जाता हूं तो मेरे को।
हाँ जी,
थक जाता हूं तो
गुस्सा। हाँ तो ठीक है, हाँ थक जाएंगे तो गुस्सा आएंगे, लेकिन मैं नींद की कमी बोला ना मैम, भाई भूख लग रही है, ऐसे भी थक गए हैं तो टॉलरेंस कम हो जाती है, और टॉलरेंस कम हो गई तो भी गुस्सा आता है। तो वहां भी ये बात को पक्की करो कि भी अब मैं रिलैक्स कर लू थोड़ा सा, या और कोई तरीका ढूंढू कि जिससे मेरा काम हो, पैसे आए, परंतु क्रोध से होने वाला नहीं, उल्टे मेरी एनर्जी लॉस हो, फिर मैं और काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे सुनो, लिसन, सचमुच अंदर में क्या चल रहा है, इससे भी बहुत बड़ी प्राप्ति है। और आई का अर्थ है इंट्रोस्पेक्ट, मतलब अंदर से जांच करो कि ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या अंदर में चल रहा है, कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, उसको परिवर्तन कैसे कर सकता हूं, है ना, ये सही है या नहीं है, ऐसे इंट्रोस्पेक्शन करो। तो पहला है डॉक्टर अली को संपर्क करो, और फिर आपको बताया भी था कि पोस्टपोन करो, गुर्जर एक का उदाहरण दिया था ना, तो आप खुद सोचो कि क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है, तो इमीजिएटली कुछ भी नहीं बोलना है ना, कम से कम कितना रुकेंगे, कितना समय, 24 सेकेंड, है ना, 24 आवर्स नहीं रुक सकते, कोई बात नहीं ना, 24 मिनट्स भी पॉसिबल होता है कई बार, क्योंकि घर में कुछ आप रोको रुको घड़ी में देखो 24 मिनट बीतने दो, उसके बाद में बोलूंगा, और तब तक मुझे सोचने, तब आप सोचेंगे तो पाएंगे कि वो क्रोध नहीं करने से बहुत बड़ी प्राप्ति हो। अगर वो आप 24 सेकंड भी रुक जाते, भाई बताता कुछ समझदारी से बताते, तो कई बार जीवन भर के जो रिश्ते टूट जाते, वो रिश्ते नहीं टूटते। और कोई बड़ी समस्या आ जाती है कि व्यक्ति जॉब चली गई, गुस्से में बॉस को कुछ बोल दिया, तो थोड़ा सा स्टेबल रह जाते तो आपकी जॉब नहीं जाती। ब्लैक का दिल साफ था, परंतु उस समय गुस्से में आपने उल्टा सीधा बोल दिया, उसे कुछ न कुछ सोचो कि 24 घंटा 24 सेकंड तो रुकना मुश्किल नहीं है। वो दूसरे नहीं, कमरे में जाके एक्सरसाइज करता हूं, जंप लगाता हूं, 24 बार जंप लगाता हूं, 24 सेकंड हो जाएगी, उसके बाद बोलूंगा, है ना। 8-10 गहरे गहरे सांस ले जाता हूं, देखो 4 भी सांस लो शायद 24 सेकंड हो जाएगी, गहरा सांस लो 4 बार 24 सेकंड हो जाएगी, उसके बाद वो है ना, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। उस समय में यही सोचो कि भी कैसे मैं स्टेबली इस बात को बताऊं। कई बार तो मैंने ये सोचा है ना, प्रैक्टिकल की लाइफ में किया है कि तब यो कंफ्यूज, अभी बोलूं या नहीं बोलूं, क्या बोलूं, तब तो उल्टा सोचो कि रुक ले दो, है ना, आसमान गिरने वाला नहीं है, मैं अभी बोलूं या 24 मिनट के बाद बोलूं या 24 घंटे के बाद बोलूं, आसमान गिरने वाला नहीं है ना, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। तो लेट मी प्रॉपर प्लान करके बताओ तो आप इमोशनली भी इंटेलिजेंट बनेंगे। ये सारी चीज क्यों करनी है, क्योंकि अन्यथा आज हम लोग असफल क्यों हो रहे हैं, समस्याएं क्यों आ रही, क्योंकि हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। तो कोई ना कोई तरीके से पोस्टपोन करो। फिर नेक्स्ट है सेकेंड कन्विक्शन, कि पक्का कर लो कि जरूरी है। सबको कन्विंस हो गया है 3 दिनों में या नहीं हुआ कर, आपको तो हो गया, जिनको नहीं हुआ आए तो कन्विंस करो कि इस पर काम करना है। और कोई मैं जो बोल रहा हूं आध्यात्मिक संस्थाएं ऐसी बात नहीं है, आज अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को बता रहे हैं ना, वर्ल्ड फेमस जिन्होंने किताबें लिखी वो भी बोलने लगी कि इस पर वर्क करना ही है, अन्यथा आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है, उसका मूल कारण है उस पर विजय प्राप्त करो। मैंने कल अच्छे से चर्चा की कि मूल को पहचानो, उसे तर्क दो। आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां कौन सी पता है, नहीं बताया, इनमें मन, बुद्धि और संस्कार। मन प्यार की भाषा समझता है ना, मन से प्यार से बात करो। क्या नाम है, क्या है नाम, विकास। देखो मन से प्यार से बात करो, विकास बरोबर समझ, विकास शांत हो जाए, विकास धैर्य रख, धैर्यता से ही सब कुछ मिलता है, विकास ये समय भी बीत जाएगा। ऐसे प्यार से अपना नाम लेकर के बात करो तो मन पर प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि तर्क की भाषा समझती है, बुद्धि को लॉजिक चाहिए, छोटा सा भी लॉजिक दे, कि भी अनुभव से डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं कि भी क्रोध का फायदा नहीं है, मुझे रुकने के पहले अंदर में भी आ रहा है, फोर्स आ रहा है, परंतु फिर नुकसान होने वाला है, लेट मी वेट, है ना, थोड़ा सा मैं बेचैनी हो जाएगी सर, है ना, प्रेशर आ जाएगा, लगेगा निकालना है मुझे, कि फिर भी तब जरूरी है, अब मुझे रुकना है। तो बुद्धि तर्क की भाषा समझती है और संस्कार फोर्स की भाषा समझते हैं। संस्कारों पर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है, कईयों के क्रोध करने की आदत हो गई होती है, संस्कार हो गए होते हैं, तो वो संस्कार पर विजय प्राप्त करना है तो थोड़ा जबरदस्ती भी करो, बोलो विकास चुप बैठ, अभी कुछ नहीं बोलना है, रुक जाए फिर देखते क्या करना, ऐसे थोड़ा सा संस्कार पर फोर्स करो, विजय प्राप्त हो सकता है।
सर,
बिकॉज ओवरकमिंग द कॉज है और कन्विक्शन पक्का करो. चौथी बात अवेयरनेस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया डॉक्टर अली ने जो कहा वह है अवेयरनेस. पांचवा है क्रोध विष चक्र है कि मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हुआ, मैं देख लूंगा बरोबर करूंगा, जब तक जोर से नहीं बोलूंगा काम होने वाला नहीं है. कई लोग तो ये पक्का समझते हैं कि जोर से बोलते हैं ना तो ये व्यक्ति मानता है, परंतु वो बुद्धि से मानता नहीं है क्योंकि आपने जोर से बोला तो चाहता है कि भी प्रॉब्लम ना हो तो उस समय चुप हो जाता है. उसका मतलब यह नहीं कि उसने मान लिया. तो यह पक्का करो कि विशेष सर्कल को ब्रेक करना है, जितना जल्दी वो विष चक्र को ब्रेक करेंगे अच्छा है. जैसे दलदल में कोई फंस रहा है तो जितना जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेगा अच्छा है, इसलिए वह उसको बस तुम आगे रुक जाओ. कुछ भी कर सकते, गहरा सांस ले सकते हैं, पानी पी सकते, सोच को स्टॉप कर सकते हो, लेकिन वो विचार के विष चक्र को रोको थोड़ा. बोले पूरी सफलता न भी मिली, आज लोग क्यों नहीं करते हैं, ऐसी बातें आपने सुनी भी होती है, आपको पता भी है, फिर भी आप नहीं करते क्योंकि सोचते सफलता नहीं मिलती है, उल्टा प्रॉब्लम बढ़ता नहीं है, भाई मैं और ज्यादा डिस्टर्ब होता हूं, उससे अच्छा बोल लू तो अच्छा है, परंतु नहीं. एक बार मुख से निकल गया फिर वो वापस नहीं ले सकते, इसलिए तब ही भले थोड़ी भी सफलता मिली एफर्ट करनी भी, हर बात में ऐसा है. जो कुछ भी अच्छा करना है ना, भी सिंपल सी भी बात कि भाई सवेरे वॉकिंग करनी है, आप सवेरे उठे लगता है तो बहुत थका हुआ है, अभी वॉकिंग करने जाते हो तो ऑफिस में तो बहुत थकावट होगी, लेकिन फिर भी उसको ब्रेक करो, सोचो उठ के बस 2 मिनट ही चल के आ जाता हूं, आप घर से नीचे उतरे फ्लैट के बाहर 2 मिनट भी निकले भले आ जाओ आपको बहुत थकावट होगी, तो भी आपने विष चक्र को थोड़ा सा ब्रेक किया. कोशिश करो और थोड़ा फोर्स करो, मैं 5 मिनट चल के आता हूं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा थोड़े समय में, अच्छा लगेगा फिर और आप करें. खाने में भी खाने में कंट्रोल नहीं आता है, बस थोड़ा सा भी मैं आधी रोटी भी छोड़ दू, एक बार उसमें आपको सफलता मिली, दूसरे दिन होगा एक रोटी भी कम खा सकता हूं, आगे चल के ये भी होगा कि भाई एक रोटी से चल जाएगा, 2 रोटी भी कम खाऊंगा कोई बात नहीं. ऐसे थोड़ा थोड़ा भी करना शुरू करो तो वह विष चक्र ब्रेक हो. ये भी एक प्रकार से व्यसन है, सजगता से थोड़ा कि अभी थोड़ी देर के बाद बोलता हूं, 1 मिनट रुक जा, 1 सेकंड रुक जा, बाद में बोलता हूं. देखना वो जो भी आपने एफर्ट की ना वो आपका बोनस है, आपको वह बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. तो विष चक्र को ब्रेक करना. करीब 50% जो गुस्सा है वह कहते प्री प्रोग्राम्ड होता है, जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम देते हैं ना, क्योंकि आपने एक प्रोग्राम दिया तुरंत तो वही खुलेगा. तो अधिकतर क्रोध में भी यही होता है कि पहले से ही आपने सोचा होता है कि अगर मेरे बेटे के कम परसेंटेज आए तो मैं ऐसे ऐसे उसको बोलने वाली हूं, अगर असिस्टेंट मिस्टेक करेगा तो ऐसे ऐसे उसको बोलना है ना, कोई भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये करने होगा. पहले से अनोइंगली आपने कुछ प्लानिंग नहीं की, वो ऑटोमेटिक अंदर में आता है और ऐसा आपने समझो 4 बार सोच लिया कि बेटे के कम परसेंटेज आए तो मैं ये बोलूंगी, जैसे आपके सामने वो रिजल्ट कार्ड आया कम परसेंटेज ठक करके विदिन अ मिली सेकेंड वो प्रोग्राम बाहर आता है, सब शुरू हो जाते हैं. तो एक ऐसे क्रोध प्री प्रोग्राम्ड है, ऐसे ही क्रोध को अलविदा कहना भी वो प्रोग्राम डाल दो पहले से, आत्मा में वो प्रोग्राम डाल दो कि ये बात होगी, अन्याय होगा तो मैं ऐसे ऐसे व्यवहार करूंगा, कोई झूठ बोलेगा मैं शांति से सोचूंगा फिर ऐसे ऐसे उसको समझाऊंगा। थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोग्राम अंदर में डालो जो आमतौर पर आपके सामने परिस्थितियां आती। और अगर आपने चार बार पांच बार उसको सोच लिया, वो प्रोग्राम डाला, तो जब भी वो आएगा ऑटोमेटिक वही बाहर आ जाएगा। और आत्मा को अगर प्रोग्राम देना है ना कोई भी प्रकार से, ये शिविर तो एक बात है, ये शिविर में आप बहुत कुछ ऐसा सीख रहे हो कि जो आपको और सभी परिस्थितियों में भी मदद करेगा। और वो प्रोग्राम देने के, देखो आत्मा कंप्यूटर है ना, आत्मा को प्रोग्राम देना दो टाइम बहुत अच्छे है, कौन से मालूम है? एक तो सवेरे सवेरे, सवेरे उठ करके स्नान आदि करके तैयार हो जाओ, फिर थोड़ा ध्यान करो, फिर प्रोग्राम दो कि आज सारा दिन ये होने वाला है, मैं ऐसे ऐसे करूंगा। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है, रात को सोने से पहले देखो किताब पढ़ते पढ़ते कभी नहीं सो, टीवी देखते देखते कभी नहीं सोना है, बातें करते करते कभी नहीं सोना है। सोना वह सिर्फ सोना नहीं है, सोने में जब आप सोते हो तब सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस समय आप अच्छे से प्रोग्राम दो तो दो फायदे होंगे, एक तो नींद अच्छी आएगी आपको, और दूसरा तब वह चीज आत्मा में गहराई भी जाएगी और जीवन भर वह प्रोग्राम पक्का हो जाएगा, आपको मदद मिलेगी। तो सोने से पहले भी ये प्रोग्राम दो अच्छे से कि यह होगा मैं ऐसा करूंगा, यह होगा मैं ऐसे पीसफुल रहूंगा, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैप्पीनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, है ना। सब कुछ मिल गया लेकिन शांति नहीं मिली तो क्या फायदा। ऐसे मन को वह प्रोग्राम देके और सोचो भी मैं संतुष्ट हूं, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, तब भी अच्छे से प्रोग्रामिंग होगा। और सातवां कि सही तरीके से एक्सप्रेस करो, बताया भी अच्छी तरह से आपको कि करना ही है ना, 24 सेकंड के बाद सही रूप से एक्सप्रेस करो, एसर्ट करो। और क्या ध्यान रखेंगे, एक्सप्रेस करना है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, नहीं समझे अब तक? हाँ हाँ, और सॉफ्टली और बैलेंस, और कुछ कहीं गलती ना हो जाए, और कुछ सजग होके बोलो, वंडरफुल, और स्लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थंब रूल है कि मन का संतुलन नहीं खोना है, क्रोध में गड़बड़ी ही होती है कि आप संतुलन को खो देते हैं ना, स्टेबल रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तब तनाव में नहीं आना है, बोलना है स्टेबिलिटी को रखते हुए मुझे वह बात को बतानी, बस ये थंब रूल भी आपने अपना दिया तो सही रूप से आप एक्सप्रेस करेंगे,
तनाव में नहीं आएंगे तो गुस्साई नहीं कर सकेंगे।
हाँ तो अच्छा है ना, यही तो बात हम बोलना चाहते कि गुस्सा नहीं करो। जो बहुत बड़ी बात सीखने की है कि जब लोग आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं तब भी कंफर्टेबल रहो, और उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स है कि वह डिफरेंस को एंजॉय करो। बच्चे कुछ और अलग रीति से कर रहे हैं, वो डिफरेंस को सचमुच एंजॉय करो, है ना। थोड़ी मिस्टेक होने तो भी होने दो, बस समझाना है और एफर्ट करनी है, परंतु वो मिस्टेक से जब उसको दुख होगा तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। मैंने भी बताया है कि ये मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगता है, देखो आपके जीवन में भी बहुत मदद करेगा, कि बड़ा शौक लगता है तब ही बड़ी सोच आती, डिस्टर्ब नहीं हो अगर बच्चे और सभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं।
मतलब ये तो क्रक्स है, स्टेबल रहकर कुछ भी करो सब, स्टेबल रहकर कुछ भी करो।
हाँ, लेकिन मन स्टेबल हो, मन स्टेबल, और स्टेबल जैसे कहा ना कि भाई टेंशन नहीं आएगा तो गुस्सा नहीं आएगा, स्टेबल रहेंगे तो आप गाली नहीं देंगे, है ना, स्टेबल रहेंगे तो उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे,
सहज दिल से बात करें।
हाँ, आप कभी थोड़ा फोर्स आएगा उसमें, आप उनको एम्फोसाइज दे रहे हो लेकिन पीसफुली दे रहे हो, तो डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होगा। और इनर मोटिव को रिकॉग्नाइज करो, एक्चुअली कई बार कुछ भी नहीं हो तो वो अंदर का जो आपका उद्देश्य है ना वो गलत होता है, जैसे कि लोगों को कंट्रोल करना, नहीं ना, मेरी बात मानो, ऐसे जो अंदर में आपका लक्ष्य होता है, इनर मोटिव होता है, वही गलत है, वो इनर मोटिव को चैलेंज करो कि ये ईगो को मैं बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। अगर एक मेहनत आपको करनी है ना, जीवन में शांति चाहते हो, सफलता चाहते हो, सुख चाहते हो, सचमुच अगर एक मेहनत करनी है तो क्या करनी है पता है, अहंकार को मारने की मेहनत करो, सूक्ष्म अहंकार को भी मारो। ब्रह्मा कुमारी के चीफ जानकी दादी है ना, उनका मन बहुत स्टेबल है, ईईजी के द्वारा भी उनको चेक किया गया और देखा कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में अलग अलग काम कर रहे, प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो भी उनका मन का जो ब्रेन वेव्स है ना वो एकदम स्टेबल है, डेल्टा वेव्स निर्माण हो रहे। तो पत्रकारों ने पूछा कि दादी जी इतनी स्टेबिलिटी आपने कैसे आई, तो दादी ने कहा कि भी मैं जब ब्रह्मा कुमारी बनी यह ज्ञान को मैंने धारण किया और एक दो साल में मैं भी औरों को ये सिखाने लगी तो मेरे में एक सूक्ष्म अहंकार आ गया कि भी मैं टीचर हूं, लोगों को मेरी बात माननी चाहिए, मेरा स्थान होना चाहिए। जब वो सूक्ष्म अहंकार भी आया तो मन डिस्टर्ब होता था। थोड़े समय में मैंने ये जांच की कि जो डिस्टर्बेंस आ रहा है वो सूक्ष्म अहंकार के कारण आ रहा है, सूक्ष्म अहंकार पर जरूर विजय प्राप्त करना चाहिए। और फिर मैंने आध्यात्मिकता से इस पर काम किया कि इस अहंकार को मारना है, सूक्ष्म अहंकार को खत्म करना है, अलग अलग तरीके से उस सूक्ष्म अहंकार को खत्म किया। मैं आपके मशीन में तो आज चेक किया परंतु कई सालों हो गए मेरा मन स्टेबल है, आज भी परिस्थितियां मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होती, इतनी बड़ी संस्था है ना, लोग आके मुझे उल्टा सीधा भी सुना देते हैं ना, भारत में तो इतना नहीं होता है, फॉरेन में लोग आप देखेंगे ना वो देखते नहीं कि कौन है ना, सीधा जाके मुंह पे बोल देंगे, उनको कुछ मन में आ गया है तो लोग आके मुझे कुछ भी बोल देते, लेकिन फिर भी मन स्टेबल होता है क्योंकि अहंकार को मार दिया। तो ये काम बहुत करना है, अहंकार को मारना है, थोड़े ही लोग बोल रहे हैं, हाँ तो थोड़ी देर रुकेंगे, आज देरी हो रही है समझे, तो थोड़ा रुकेंगे। अच्छा जरूर, देखो बहुत अच्छी स्टोरी है कि अहंकार को मारने से क्या और कैसे मारना है। एक गुरु थे, एक शिष्य उनके पास गया, कहा कि गुरुजी आपने जो कुछ भी इतने सालों में पुरुषार्थ किया, तपस्या की, उसका रहस्य मुझे बताओ, उसका सार मुझे बताओ। उनका ठीक है, मैं तुझे जरूर सिखाऊंगा, पहले तो एक काम कर कि छोटी सी पहाड़ी है उस पर एक कमरा बना दे, फिर उस कमरे में बैठ के मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि भी सही बात है, तो मेहनत कर करके फटाफट एक अच्छा सा कमरा बना दिया। गुरु जी आए और बोले कि ये भी कोई कमरा, इसको तोड़। उसने सोचा कि शायद ठीक से कमरा नहीं बना है, तो गुरु जी को अच्छा कमरा चाहिए, तो उसने तोड़ दिया। फिर से मेहनत की, है ना, अच्छे से खूब मेहनत की और फिर से कमरा वहां पर बनाया। फिर से गुरु जी आए, यहां वहां देखा, तोड़। सोचे अभी भी शायद गुरु का एक्सपेक्टेशन और अच्छा है, तो उसको तोड़ दी। फिर से बहुत अच्छा कमरा बना है, एकदम फर्स्ट क्लास की, थोड़ी भी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और बुरा देखा तो फिर से गुरु आए, क्या बोला होगा, तोड़ दे। परंतु उसने ठान लिया था कि मुझे गुरु से ज्ञान लेना ही है। ऐसा 10 बार गुरु आए, गुरु ने कहा ये कमरा तोड़, परंतु पूरी लगन से वो बनाता रहा, है ना। कहीं साल बीत गए, फिर 11वीं बार जब कमरा बन गया और फिर से गुरु आए तो क्या बोला होगा, तोड़ दे। और जैसे हथौड़ा लेके तोड़ने जा रहा था, गुरु भाग के उसको गले में ले और कहा तेरी परीक्षा पूरी होगी। इतने समय में मैं देख रहा था कि तेरे चेहरे पे वो डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई देता था, तूने कुछ बोला नहीं कि क्यों इतनी बार तोड़ रहे, क्यों ऐसा ऐसा बोल रहे हो, क्यों आपको पसंद नहीं आ रहा। तो इतना समय जो तूने बिताया उतने में तूने अपने अहंकार को जरूर मार दिया है, और अब तेरा अहंकार पूरा मर गया है तो तू ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार है। और गुरु ने अपने सारे जीवन का जो रहस्य था उसको सुनाया। तो बस हमको भी यही करना है, और इससे अगर आप तैयार हो गए ना, मुख्य बात जो है मैंने बार बार रिपीट की कि क्रोध क्यों आता है, क्योंकि अहंकार को चोट लगती है। बस मेरे में अहंकार है ही नहीं, कोई मेरी बात नहीं माने कोई बात नहीं, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे कोई बात नहीं, इससे आप नीचे नहीं होते हो। अहंकार भी क्यों चाहते हो, क्योंकि अच्छा लगे, फीलिंग गुड। परंतु उल्टा तो अहंकार से फीलिंग बैड होता है, इसलिए भी मुझे इस पर काम कर रहा हूं ना। कुछ प्रैक्टिकल करो, सपोज अहंकार को मारना है सबको, तो कुछ प्रैक्टिकली करो। देखो कभी है ना, पुराने कपड़े भी पहनो, है ना, फटे हुए कपड़े भी सिलाई करके भी पहनो, लोगों को देखने दो, बड़े सोचे कि ये क्या इतना कपड़ा भी ठीक नहीं है। तो आपका अहंकार जाएगा, है ना। कभी एकदम सिंपल भी रहो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें करो, जिससे वो होगा ऑटोमेटिक, धीरे धीरे आपका अहंकार समाप्त होता जाएगा। तो रिकॉग्नाइज द मोटिव और उस पर काम करो। यह सब चीजें भी काम करती है, परंतु एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो वह है कि क्रोध से जो उल्टा है वो जीवन में लाओ। क्रोध से उल्टा क्या है, प्रेम है। देखो प्यार को धारण करो, और क्या है क्रोध का उल्टा, शांति को जीवन में लाओ, और प्रेम शांति और सहनशीलता, और एक है माफ कर देना। हाँ, ये सब क्रोध से उल्टा है, उसको जीवन में धारण कर। देखो सभी एक बार खड़े हो जाएंगे, डॉक्टर साहब यहां आइए। देखो सभी एक एक पार्टनर बनाओ, भाई भाइयों को बनाएंगे, बहनों बहनों को बनाएंगे, या डॉक्टर साहब मेरे पार्टनर, देखो पार्टनर बनाओ सब, है। देखो पार्टनर का चेहरा देखो, फिर ये सोचो वही व्यक्ति है जिस पर मुझे बार बार गुस्सा आता है, तो देखो अब आपके पास कोई चीज हो वो बड़े प्यार से अपने पार्टनर को दो, मैं देके दिखाता हूँ, फिर सब मुझे फॉलो करेंगे, करेंगे प्रॉमिस। अच्छा देखो, हाँ प्यार से दो, करो करो मेरा मुंह देखो, जल्दी जल्दी करो। देखो जब तक गले नहीं मिलेंगे मैं छोड़ूंगा। जी समझे, कि क्रोध नहीं करो, प्यार करो। दूसरी बात कि है ना, क्रोध नहीं करो, माफ कर दो। सचमुच दिल से माफ करो ना। कई लोग कहते कि नहीं नहीं सारी दुनिया को माफ करूं, पर ये बंदे को माफ नहीं करूं। हम नहीं कह सकते। थैंक यू। देखो ताली तो बजा दो डॉक्टर। माफ करने में आप इससे उपकार नहीं कर रहे हो। जब माफ करते हो तो आप अपने आप को ही मदद करते हो। अगर माफ नहीं करेंगे तो अगले जन्म में भी उसे आप लेकर के जाएंगे। और इसलिए माफ करना है कि जो उसका बुरा प्रभाव मेरे पर है उससे मुक्त होना। देखो ना, आप कहीं जाले में फंस गए हैं, है ना, हम जंगल में जाते, झाड़ में फंस गए, तब निकलने की कोशिश करते हैं कि अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कोई आपके सामने बुरा हुआ, कुछ समस्या ही बहुत बड़ी, कितनी न बड़ी समस्या है, फिर भी माफ करने में ही हमारा फायदा है। ये भी सोचो कि उसका प्रभाव मेरे पर ना पड़े, इसलिए भी मुझे माफ करना है। और उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा ही मिलेगा, आपको सोचना नहीं। आप एक्चुअली परमात्मा पर छोड़ दो, भगवान को नहीं मानते हो, कॉस्मिक एनर्जी पर छोड़ दो, है ना, वो उसका हिसाब ठीक करेगी, मुझे नहीं करना। फिर भी आपको लगे बड़ी समस्या है ना, कुछ तो करना पड़ेगा, तो कर भी सकते हो कि मन एकदम स्टेबल होना चाहिए। अगर वो थॉट चल रहे हैं तो वो बुरा है। मन स्टेबल हो, प्रॉपर पीसफुल हो, और फिर बड़े वो करोगे। हम अन्याय के साथ लड़ो, जैसे नहीं जैसिका लाल का जो मर्डर केस था कि भाई वो पूरा लड़ा गया तब न्याय मिला, तो वो पूरी मूवमेंट भी ठीक थी। अगर स्टेबिलिटी से मूवमेंट की गई है तो वो बात भी ठीक है, परंतु क्रोध नहीं करना। मन को एकदम स्टेबल रखना जरूरी, तो इसके लिए माफ कर दो, तो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा ना, कि प्यार को भरो, शांति को भरो, धैर्यता को अपने अंदर में लाते जाओ। भले मैंने कह तो दिया 5 सेकंड में, लेकिन इसको लाने में कितना टाइम लगेगा मालूम है? कितना टाइम लगेगा? हाँ, कम से कम 5 महीने लगेंगे, है ना। हाँ, तो लाना है इसको, अभी बोलते नहीं है, कहते हैं 5 महीना को मांगेगा। आप सबने हाँ बोला ना, तभी 5 महीना आना पड़ेगा इधर। आएंगे? अच्छा, थोड़े ही लोग बोलते हैं। हाँ, और बोले हम अपनी उन्नति के लिए ना, कैसे हम कहीं से भी टाइम निकाल के आप खाना खाते हो ना, कहीं से भी टाइम निकाल के स्नान करते हो, ये नहीं बोलते ना कि देरी हो गई, स्नान करे बिगड़ी ऑफिस में जाता हूं। तो ऐसे ही कुछ भी हो जाए इसके लिए टाइम निकालना। तो ये बेस्ट स्थान है, यहां आप कर सकते, घर में नहीं कर पाएंगे। तो अपोजिट चीजों को जीवन में लाओ। जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो बढ़ाओ। जितना जितना सेटिस्फेक्शन आएगा ऑटोमेटिकली क्रोध पर विचर होगा। इसलिए फर्स्ट डे भी होमवर्क दिया था, अभी भी किया है। अच्छा, किसने किसने किया? 108 लिखा नहीं, कितना लिखा? चलो 50 से ज्यादा लिखा। किसने किसने लिखा 50 से ज्यादा? खड़े हो जाओ। 50 से ज्यादा पॉइंट लिखे। हाँ, देखो 50 से ज्यादा लिखे, वेरी गुड। 50 से खड़े जाओ, खड़े रहो, खड़े रहो। बहनों में नहीं लिखा किसने 50, कितने लिखे? 55, वेरी गुड। कभी पूछा क्यों करो, अब इनको ये लिखने के बाद क्या लगा? देखिए और कुछ विचार आया 55 लिखने के बाद? सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा। हाँ, और कुछ हुआ? क्या हुआ? लेवल बढ़ा। और कुछ विचार आया? वो लिखने के बाद कुछ विचार आया? कैसे सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा।
मेरे जीवन में ये मैं और प्रगति करने के लिए ये इम्प्रूवमेंट कर सकता
हूँ। अच्छा, मेरे में इतना इतना तो और भी मैं अच्छा कर सकता हूँ। और
खुश रहने के बहुत सारे कारण मिल गए हो
क्या? खुश रहने के बहुत सारे कारण। और क्या हुआ?
संता हुई।
हाँ, प्रसन्नता हुई। देखो लिखा तो प्रसन्नता हुई। हाँ, क्या लगा?
सेटिस्फेक्शन
लेवल। हाँ जी, कुछ हुआ?
कुछ है।
हाँ, मेरे पास बहुत कुछ है। हाँ, बैठ कर। हाँ, थैंक यू। हाँ, परमात्मा के प्रति थैंकफुलनेस है कि तुमने मुझे इतना दिया। अभी तक हमको लगता था कितना नहीं है। मैंने रशिया में भी एक बार एक्टिविटी कराई थी तो एक बैंड सिंगर थी, उसने कहा कि मैंने पूरा लिखा तो मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में सबसे लकी व्यक्ति। जब तक नहीं लिखा था यह नहीं था कि मैं इतनी लकी हूं। तो इसलिए प्रैक्टिकली वो करूं तब इनर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। जब हम औरों को मदद करते हैं तो वो अपेक्षा नहीं रखो। क्रोध का और एक कारण भी है, औरों से अपेक्षा। हम बिना कोई अपेक्षाएं मदद करें तो क्यों? करने में मुझे अच्छा लगता है। जब और किसी को मदद करते हैं तो एक तो आपको टेंशन का टाइम नहीं होता है, नेगेटिव विचार तब नहीं आएंगे। दूसरा, हम औरों को मदद करते तो हमको लगता है कि मेरी समस्या तो कम है, औरों की समस्याएं बड़ी हैं। तीसरा, जब औरों को मदद करते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ दुआएं तो मिलती ही है, भाई टेम्पररी भी हो दुआ जरूर मिलती है। तो इसलिए हाँ, औरों का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते अपना भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और अब एंगर एक फोर्स है, अगर ठीक से आप करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो तो वह सारी दुनिया को मूव कर सकता है। तो उस फोर्स को क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा को डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करनी है ना। गांधी जी को भी शायद गुस्सा आया होगा जब अफ्रीका में फर्स्ट क्लास की टिकट थी फिर भी ट्रेन के बाहर फेंक दिया, तो रात भर उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आया होगा। लेकिन वो गुस्से में डिस्टर्ब नहीं रहे, पैरालिसिस नहीं हो गया, वो लकवा नहीं हो गया, परंतु उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज किया। और कहीं कुछ ऐसा विचार आया होगा कि आज आपने मुझे ट्रेन के बाहर फेंका, एक दिन आएगा आपको मैं मेरे देश के बाहर फेंक दूंगा। और वो कंस्ट्रक्टिव फोर्स था, पावर थी, तो चीजें आ गई। और ऑटोमेटिक अच्छे अच्छे तरीके मिले कि स्टेबिलिटी के साथ है ना, लड़ाई करे बिगड़ भी कैसे हम तुम्हारे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे उस फोर्स को सही रूप में यूज करो। और यह है मेडिटेशन की बात। हम अंत में मेडिटेशन करेंगे भी, उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं है ना। अब तक भी कुछ लोगों को ऐसा होगा कि अरे अरे गुस्सा तो नहीं चाहिए, उसके बिगड़ चलने वाला नहीं है ना। तो देखो एक काम कर सकते हैं, जिसको कहा गया है फेक एंगर, कि झूठ मूठ का गुस्सा करो। तो उनको बहुत डिफिकल्ट है, गर्दन हिला रहे कि अच्छी बात बोल रहे अभी तक, अभी तक बोला प्रैक्टिकल नहीं था, अभी बोल रहे हो प्रैक्टिकल कि झूठ मूठ का गुस्सा करो। परंतु बहुत आपको है ना वर्क करना पड़ेगा इसे। ऐसे आ जाएगा तो वो डिस्टर्ब हम हो ही जाए, परंतु अगर झूठ मूठ का गुस्सा करना है तो फिर से वो प्री प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अच्छे से अपने आप को प्रोग्राम दो कि भी ये होने वाला है, मैं थोड़ा सा फोर्स से बोलूंगा परंतु मैं एकदम स्टेबल हूं, मैं एकदम पीसफुल हूं है ना। थोड़े मैं आवाज को बड़ा करूंगा लेकिन मैं अंदर से एकदम स्टेबल हूं, टोटल 100% मेरे में 0.01% भी कोई बात नहीं है, थोड़ा भी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूं, थोड़ा भी मैं डिस्टर्ब नहीं, है ना, वो जो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मैं एकदम स्टेबल हूं, मैं एकदम शांत, ऐसा बार बार बोलू ये मैं करने जा रहा हूं, लेकिन इतना एकदम परफेक्ट बैलेंस को, परफेक्ट पीस को मेंटेन करके मैं बोलने, तो फिर शायद तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आया तो नेगेटिव इफेक्ट होने लगे, अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो होगा। तो जब आप सोचो और कोई उपाय नहीं है, तब इस प्रकार से पूरा होमवर्क करके अच्छे से तैयारी करके फिर उसको बोलो स्टेबली एकदम, और उल्टा सीधा शब्द नहीं सुना है ना, कुछ उल्टा सुना लो ना, तो फिर तो उसको याद रहता है कि तुम बेकार के हो, कभी सुधरोगे नहीं, व्यक्ति सोचता है कि ये तो फिर वो कितना भी सुधरने की कोशिश करे तो भी उसको ही आएगा कि मैं तो सुधर रहा हूं, लेकिन ये तो मानने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो बोल ही दिया कि मैं कभी सुधरने वाला नहीं, तो एक भी शब्द यहां वहां नहीं सुना है, उल्टा ये भी कहना है कि ये तुम चेंज कर दो तुम बहुत अच्छे हो, बस इतना सा तुम्हारे में परिवर्तन चाहिए, ना आई रिस्पेक्ट यू, मैं तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं, जैसे फैमिली मेंबर है बोलो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, परंतु तुम बस इतना सा चेंज कर लो तो मेरा प्यार सदैव के लिए तुम्हारे साथ कायम रहेगा, ऐसे प्रॉपरली करो तो ठीक है। अच्छा अभी देखो बहुत अच्छे से ध्यान की विधि करेंगे, देरी नहीं हो रही है ना, देखो अच्छे से करना, एक पावरफुल टेक्निक है, बहुत सारी मेथड्स है मेडिटेशन की, फिलहाल तो सीढ़ी नहीं है, आपको चाहिए थोड़े समय के बाद कॉन्टेक्ट करना, जब मैं रिकॉर्ड कर लिया ऑलरेडी दिल्ली में वो बन के भी आ गए, एक ही सीढ़ी में ऐसी पांच टेक्निक्स है, वह सीढ़ी भी तैयार हो जाएगी, लेकिन अभी एक टेक्निक मैं आपको कराता हूं, देखो अच्छे से उसको करना, इसको कहा है बलून मेथड, कि एक गर्म हवा के बलून में आप ऊपर जा रहे हैं और सारी प्रक्रिया को मेडिटेशन के साथ जोड़ा है, आप देखो कमर को सीधी रख के बैठा गए, एक बार खड़े हो जाओ, बहुत समय से बैठे हैं, बोलो सारी थकावट दूर दूर जा रही है, एकदम थकावट को दूर दूर भेज, क्रोध को भी दूर दूर भेज दो, बोलो भाग जा भाग जा भाग जा, क्रोध को बोलो गया गया गया, क्रोध गया नीचे नहीं पैसे, क्रोध को बोलो नीचे भाग जा जमीन के अंदर चला जाए, मेरे लिए नहीं सही, यहां देखो ऊपर भेजो या नीचे भेजो, बाजू वाले को नहीं देना, ऐसा नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, पूरा पैर आपका वाइब्रेट होगा, अच्छी सी एक्सरसाइज है, ऐसा देखे बहुत अच्छा है, इसे
पूरा फील करो,
एनर्जी को फील करो, एकदम वाइब्रेशन को फील करते करते, हाँ कमर को सीधी रखनी है, दोनों पैरों को थोड़े दूरी पर जमीन पर रखना है, डायरी पेन को नीचे रख दो, हाथ को ऐसे मोड़ लो, कंधे को भी ढीला कर दो, राजयोग का अभ्यास खुली आंखों से भी किया जाता है, परंतु आप पहली बार कर रहे हो तो चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते, एकदम शरीर को हल्का कर दिया, एक दो गहरे सांस लो, जब सांस ले रहे हैं तो ऊर्जा को अपने अंदर भर रहे हो, जब सांस छोड़ते हो सारा तनाव शरीर से बाहर निकल जाता है, बस सांस की गति को ही फील करो। जैसे ही सांस की गति को फील करते हो, विचारों को मोड़ सकते हो। यह सोचिए कि बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें गर्म हवा के गुब्बारे में आप बैठे हैं। आसपास में कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, कहीं लोग आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर अन्याय हो रहा है, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। जैसे आप यह सब दृश्य देखते हो तो आपको गुस्सा आता है, आप डिस्टर्ब होते हो। अब यह बलून धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, 5 फीट 10 फीट ऊपर जा रहा है। देखो आसपास का दृश्य कैसा दिखाई देता है, और ऊपर जा रहा है, 50 फीट 60 फीट ऊपर जाता है तो नीचे के लोग छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब हम मन की स्थिति को ऊपर उठा लेते हैं तो परिस्थितियां छोटी दिखाई देती है। इसके लिए सोचिए कि जीवन एक लंबी चलने वाली सीरियल है। इस सीरियल में एक्टर के रूप में मैं अपना पार्ट बजा रहा हूं। बस मैं एक एक्टर हूं। जैसे ये भाव निर्माण होता है, थोड़े डिटैच हो जाते हैं कि मैं तो आत्मा हूं। इस दुनिया में आकर के मैंने वेशभूषा धारण की है और ये मेरा पार्ट है, ये सब कुछ वास्तव में मैं नहीं हूं। और ये बलून ऊपर जाता है 200 फीट 300 फीट और ऊपर जाता है तो नीचे के लोग दिखाई देना ही बंद हो जाते हैं। ऐसे ही मन की स्थिति को दम ऊपर उठा ले तो हम क्रोध मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए सोचिए कि मैं तो एक आत्मा हूं। यह शरीर तो केवल साधन मात्र है। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, परंतु सब कर्मेंद्रियों से न्यारी मैं आत्मा हूं। जैसे ये भाव आता है एकदम न्यारापन महसूस होता है। शांति का अनुभव हो रहा है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। और ये बलून ऊपर जा रहा है, एकदम आसमान में पहुंच गया है। और ऊपर जाता है, पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण से उस पार चला गया है तो वजन समाप्त हो गया है, वेट लेस हो गए हो, अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हो। एकदम ऊपर अंतरिक्ष में जा रहे हो, आसपास में सितारे हैं, उससे गुजरते हुए और ऊपर जा रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम देह और देह की दुनिया के आकर्षण से परे हो जाते हैं तो अति इंद्रिय आनंद का अनुभव करते हैं। बस देह और देह की दुनिया से मैं न्यारा हूं, मेरा पार्ट है, मैं बजा रहा हूं। जैसे ही पार्ट पूरा होता है मैं एकदम न्यारा हो जाता हूं, एकदम न्यारा। बहुत आनंद से ऊपर ऊपर जा रहे हो, अब अंतरिक्ष के भी उस पार फरिश्तों की दुनिया में आ गए हो। यहां फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, सब बहुत प्यार से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कितना संतुष्टता से, प्यार से एक दूसरे से बातें करते हैं, अपना कार्य करते हैं। बस आपको लगता है बहुत अच्छा, यहीं पर रह जाऊं, या न राग है न द्वेष है न क्रोध है। आप देखते हैं दूर से एक बहुत ही दिव्य फरिश्ता आपके नजदीक आ रहा है, बहुत प्रकाशमय फरिश्ता है। जैसे आप आपके नजदीक आता है उसके आभा मंडल से ही आप भरपूरता का अनुभव करते हो, किसके सानिध्य में जो पाना था वह सब कुछ हमने पा लिया है। उस फरिश्ते का वरद हस्त आपके सर पर है और आपको वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, पावरफुल कंपन, जैसे सूक्ष्म करंट सारे शरीर में फैल जाता है, दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में सूक्ष्म करंट फैल गया है। एकदम जैसे कि कायाकल्प हो गया, बिल्कुल डिटैच हो गए हो, एक कंप्लीट डिटैचमेंट की अवस्था में अब आप सही ढंग से स्वीकार भी करते हो कि मेरी गलतियां कहां कहां थी, कहां मेरे में औरों के प्रति ज्यादा ही अपेक्षाएं थी, कहीं सूक्ष्म में अहंकार था, मेरे में लघुता ग्रंथि थी, मैं अपने आप को इन्फीरियर मानता था, जिससे यह फ्रस्ट्रेशन आता था। ठीक से आपको पता चल रहा है कि मूल कारण क्या है। उस फरिश्ते को भी पूछो कि आप बता दो कि मेरे क्रोध के पीछे कौन सा कारण है, मैं पूरा पूरा उस पर काम करना चाहता हूं। आपको समझ में आ गया है, पूरा तय कर दिया है कि इस पर 100% काम करके क्रोध को अलविदा कह देना है, बाय बाय कर दिया है। ऐसे संपूर्ण रियलाइजेशन और शक्ति को प्राप्त कर अब आप धीरे धीरे वापस नीचे आ रहे हैं। अंतरिक्ष में आ जाते हैं और नीचे आते हैं, एकदम नीचे आते हो। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी नीचे आ रहे हैं, परंतु अपनी ही स्थिति में स्थित हो, एकदम नीचे आ गए। फिर से आप देखते हो वही परिस्थितियां हैं, लोग आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है, लोग झूठ बोल रहे हैं, काम नहीं होता है, हां कहके भी काम नहीं करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ बोलते हो तो भी आप एकदम स्टेबल हो, पक्का एकदम स्टेबिलिटी ये सदा के लिए रहेगी, क्योंकि आप समझ गए हो कि वो स्टेबिलिटी ही काम करती है, उसी से सच्ची जीवन में शांति मिलेगी, उसी से जीवन में सच्चा सुख मिलेगा, ये बात एकदम पक्की हो गई है। धीरे से राइट हाथ को ऊपर उठाइए, नीचे करिए, मैं आत्मा ही एकदम पीसफुली राइट हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूँ, लेफ्ट हाथ को ऊपर नीचे करिए, मैं आत्मा ही लेफ्ट हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूँ। हाथों को नीचे रख दीजिए, पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए, ऐसे पक्का डिटैच होकर के, मैं वो आत्मा हूँ जो पैरों को हिला रही हूँ, मैं इससे एकदम भिन्न हूँ। धीरे से आंखें खोलिए, आसपास में देखिए, जो लोग भी बैठे हैं बस आत्माएं हैं, शरीर है ही नहीं, प्रकाश स्वरूप आत्माएं ही दिखाई दे रही है, प्रकाश स्वरूप आत्माएं सामने देखिए, बस इसी शांति से इसी प्यार से सारे दिन का कार्य करूंगा। हाथों को ऐसे ऐसे करिए, नहीं ऐसे नहीं, रगड़ना नहीं रे पैसे मुझे, देखो हाथ में ऊर्जा भरनी है और ऊर्जा भर के सारे शरीर में फैलानी है, सारे शरीर में उस ऊर्जा को फैला रहे हो। ओम शांति शांति शांति। तो यह छोटा सा अनुभव था, कैसा लगा? अच्छा, किसको किसको अच्छा लगा? अच्छा, किसको किसको बहुत बहुत अच्छा लगा? अच्छा, किसको बहुत 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 अच्छा लगा? खड़े हो जाओ, किसको बहुत बहुत अच्छा लगा? और माइक देंगे, अरे सबको बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, जिसको बहुत 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 अच्छा लगा स्टेज पे आ जाओ। अच्छा, अभी देखो क्या करना है, क्यों बुला है, अब तक मैंने आपको सिखाया, अब आपको मुझे सिखाना है। ये जो कमेंट्री है ना, मैंने ओरिजिनल ऐसी तैयार नहीं की थी, उसमें चेंज आता गया, इस बार भी मैंने अभी किया, एक नई बात है, अब तक मैंने नहीं बोलता था। अभी दिल्ली में ऐसा ही सेमिनार हुआ था जिसमें एक बहन ने बताया कि भी मुझे ये लगा कि भी फरिश्ते ने हाथ रखा तो सारे ब्रेन में करंट फैल गया, स्पाइनल कॉर्ड में भी जैसे करंट फैल गया। उसे तो बहुत अच्छा, देखो यही बात है, बोला नहीं था, कमेंट्री भी नहीं था, ऑटोमेटिक उसको हुआ। वैसे प्रोसेस में आपने क्या किया, आपने क्या सोचा, आपको क्या फील हुआ और कैसा लगा? हाँ, शॉर्ट में बताएंगे। हाँ, माइक में पकड़ता हूँ, नहीं तो आप गलत पकड़ेंगे। ठीक है, हाँ,
ओम शांति। अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो प्रॉब्लम है छूट जाएगा।
अच्छा, क्या किया आपने उसमें?
कि मेडिटेशन के डिसीजन ले रहा हूं मैं कि
मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा,
हो जाएगा।
वेरी गुड, चलो पक्का।
ओम शांति। मुझे एकदम से गर्मी शुरू हो गई और लाल लाल कलर का रंग
दिखाया।
हाँ हाँ, अच्छा यार, गर्मी बोला तो नहीं था, परंतु एक विधि है जिसको ऑटोजेनिक कहते हैं, कि जिसमें सजेशंस के द्वारा हाथ पैरों को गर्म किया जाता है, कि थोड़े थोड़े हाथ पैर गर्म हो, दिमाग ठंडा हो, तो वह स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो उनको ऑटोमेटिक हुआ
ऐसे। देखो आपका शूटिंग भी कर रहे
हैं। जैसे जैसे मैं सुनते जा रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मेरे को बहुत शांति मिली। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से जब मैं ऊपर चला गया तो मेरे को बहुत शांति मिली। बट मैं जैसे जैसे नीचे आने लगा और फिर ऐसा लगा कि मैं उसी दलदल में फंस गया।
अच्छा हाँ।
इतना फर्क आया था उस पर्टिकुलर दो तीन सेकंड के अंदर। मैंने कहा फिर मैं क्यों नीचे आया।
अच्छा।
फिर मैंने आंख खोला, देखा आजू बाजू आत्माएं बैठी हुई है, सब लोगों के चेहरे देखे, एक अलग ही टाइप का मेरे को।
वेरी गुड,
यह ना प्रैक्टिस करने से। मैंने भी बताया, देखो कॉमेंट्री में भी आपने ध्यान दिया हो तो बोला कि नीचे आए, अभी हाथ ऊपर करो, नीचे करो, लेकिन आप एकदम डिटैच हो, है ना। आसपास में लोग अभी भी आपकी इच्छा के विरुद्ध कर रहे हैं, फिर भी आप निश्चिंत हो, तो ये अभ्यास करेंगे तो नीचे आने के बाद ही उसे कायम रख पाएंगे।
जी
हरि ओम। मुझे जैसे जैसे ऊपर गए तो ऐसा लगा कि नहीं अच्छा है अच्छा है, जैसे नीचे आया तो लगा वापिस उधर।
अच्छा, देखो ठीक है, हमें वो अभ्यास करना है, ठीक है ना। ओके, हरि ओम। आप वहाँ के मेरे के सामने
शांति। आई वाज फीलिंग वेरी लाइटनेस इन द ब्रेन एंड एवर दिस बॉडी।
वेरी वेरी गुड।
यहाँ कोई लेवल ही नहीं था यहाँ पे,
वेरी गुड। कहीं भी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता।
एक्चुअली मुझे आप जो बोल रहे थे वो सुन रहा था, लेकिन बातें कहा गई मालूम नहीं पड़ा। एकदम मुझे पहले सर दर्द हो रहा था, एकदम अभी लाइट हो गई, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा रिलीफ मेरा ज्यादा है, घर में करती हूँ लेकिन कम टाइम करती हूँ, थोड़ा ज्यादा टाइम उसकी आए थे महसूस हुआ, बहुत अच्छा।
देखो हाँ भले हाँ जाई ना तो दर्द का खत्म हो गया।
मैं घर में करती हूँ लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। एक तो लाइटनेस तो लगा मुझे और एक बॉडी पूरी लाइट हो गई, लेकिन सब जैसा जमा होके इधर ही आ गया ऐसा।
तो लेकिन अच्छा लगता है।
अच्छा।
तो अच्छा लगता है, वो अच्छा ही है, सारी एनर्जी यहाँ पर आ गई, वो अच्छी बात है बुरी में। ओके थैंक यू। हाँ भले आप बैठ सकते हैं, टाइम है ना, और मुझे 5-7 मिनट आपकी चाहिए, देरी होती है तो बोल रहे। हाँ जी 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 बेटे। हाँ हाँ, कैमरे के सामने।
जी मैं अभी एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रही थी, तो मैं सुबह मतलब 4 बजे उठी,
वेरी
क्योंकि एक शांति रहती है, घर पे भी शांति और बाहर भी, एंड आप फ्रेश रहते हो। एक बार मैं जो स्टडीज का ये सिलसिला खत्म हुआ तो उठने का टाइम मतलब 6:30 ऐसा एक रहता था कि ऐसी जो शांति में तभी महसूस करती थी वो
जाना नहीं, जो लोग जा रहे हैं बस 5 मिनट दो मुझे। अब ओके
वो कोरोना कैसे एक्सपीरियंस किया जाए। आज जब यहाँ पे थे
तो एक मिनट रुकना, जो लोग जा रहे हैं पूनम बहन एक मिनट रुक। अच्छा ठीक चले ठीक ठीक,
तो
कल भी आएंगे ना बोल।
तो आज जब ऐसा हम लोग अभी कर रहे थे तो सुबह का टाइम 4 बजे का नहीं था, फिर भी मतलब एक जो शांति थी, तो जैसे मैंने कहा कि इसको बताया नहीं जा सकता वैसे ही था, पर अभी ऐसे लाइट फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि फ्रेश फील हो रहा है। सुबह उठ के आए सुना, फिर भी ऐसा लग रहा है अभी उठे हैं और अभी से कुछ एक मतलब एक फ्रेश फीलिंग का है। सो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस।
थैंक यू।
भाई आपको पूछते फिर आपको भी देरी होती
होगी। हाँ देखो भाई तो नीचे भी बैठ गए। हाँ बल भाई बैठ सर, इसको स्पेशल बताना है।
शरीर के सारे मसल एकदम रिलैक्स हो गए, पर्टिकुलरली ब्रेन के सारे मसल एकदम सेटल हो गए और लगा कि जो लाइट फोर्स है थोड़ी पावर।
वेरी गुड, आप लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू, ओके थैंक यू। अच्छा तीन दिन में सबको अच्छा लगा? हाँ। आप सभी डॉक्टर के पास जाते हैं? जाते कि नहीं जाते? हाँ, तो डॉक्टर को फीस देते हैं? हाँ, मैं भी डॉक्टर, मुझे फीस देंगे? तो थोड़े ही लोग हाँ बोलते हैं। पहले तो बोला था फ्री है, बोलते फीस। देखो मेरी फीस बहुत कम है, होम्योपैथी डॉक्टर की फीस कम होती है ना। मैं तो स्पिरिचुअल डॉक्टर हूं, तो और भी फीस कम। मैं मेरी फीस है क्रोध को अलविदा कहने का 16 आना। 16 आना देंगे? दो चार लोग भी बोलते हैं 16 आना मतलब क्या, पूछते नहीं है। कहते हैं ना 100% करना है, कि जो भी सुना उसे 100% करना। दूसरा 16 आने का मतलब है 16 दिन आना। ये कितने दिन आए?
3 दिन।
और कितने? 13 दिन बचे हैं। तो और 13 दिन आएंगे? पक्का है ना?